استثنا 32 باب۔ کان لگاؤ اے آسمانوں اور میں بولوں گا، اور زمین میرے منہ کی باتیں سنے۔ میری تعلیم می کی طرح برسے گی، میری تقریر شبنم کی مانند ٹپکے گی، جیسے نرم گھاس پر فوار پڑتی ہو اور سبزی پر جھڑیاں، کیونکہ میں خداوند کے نام کا اشتہار دوں گا۔ تم ہمارے خدا کی تعظیم کرو، وہ وہی چٹان ہے، اس کی صنعت کامل ہے، کیونکہ اس کی سب راہیں انصاف کی ہیں۔ وہ وفادار خدا اور بدی سے مبرہ ہے، وہ منصف اور برحق ہے۔ یہ لوگ اس کے ساتھ بری طرح سے پیش آئے، یہ اس کے فرزند نہیں، یہ ان کا عیب ہے، یہ سب کجرو اور ٹیڑھی نسل ہیں۔ کیا تم اے بیوقوف اور کم عقل لوگو اس طرح خداوند کو بدلا دو گے؟ کیا وہ تمہارا باپ نہیں جس نے تم کو خریدا ہے؟ اس ہی نے تم کو بنایا اور قیام بخشا۔ قدیم ایام کو یاد کرو، نسل در نسل کے برسوں پر غور کرو، اپنے باپ سے پوچھو، وہ تم کو بتائے گا، بزرگوں سے سوال کرو، وہ تم سے بیان کریں گے۔ جب حق تعالیٰ نے قوموں کو میراث بانٹی اور بنی آدم کو جدا جدا کیا، تو اس نے قوموں کی سرحدیں بنی آدم کے شمار کے مطابق ٹھہرائیں، کیونکہ خداوند کا حصہ اسی کے لوگ ہیں، یعقوب اس کی میراث کا کرا ہے۔ وہ خداوند کو ویرانے اور سونے ہولناک بیابان میں ملا، خداوند اس کے چوگرد رہا، اس نے اس کی خبر لی اور اسے اپنی آنکھ کی پتلی کی طرح رکھا، جیسے عقاب اپنے گھونسلے کو ہلا ہلا کر اپنے بچوں پر منڈلاتا ہے، ویسے ہی اس نے اپنے بازوؤں کو پھیلایا اور ان کو لے کر اپنے پروں پر اٹھا لیا۔ فقط خداوند ہی نے ان کی راہبری کی، اور اس کے ساتھ کوئی اجنبی معبود نہ تھا۔ اس نے اسے زمین کی اونچی اونچی جگہوں پر سوار کرایا، اور اس نے کھیت کی پیداوار کھائی۔ اس نے اسے چٹان سے شہد اور سنگ خارا میں سے تیل چسایا، اور گائیوں کا مکھن اور بھیڑ بکریوں کا دودھ اور بروں کی چربی اور بسنی نسل کے مینڈھے اور بکرے اور خالص گیہوں کا آٹا بھی، اور تو انگور کے خالص رس کی مے پیا کرتا تھا۔ لیکن یسرون موٹا ہو کر لاتیں مارنے لگا، تو موٹا ہو کر لدھڑ ہو گیا ہے اور تجھ پر چربی چھا گئی ہے۔ تب اس نے خدا کو جس نے اسے بنایا چھوڑ دیا، اور اپنی نجات کی چٹان کی حقارت کی۔ انہوں نے اجنبی معبودوں کے باعث اسے غیرت اور مکروہات سے اسے غصہ دلایا۔ انہوں نے جنات کے لیے جو خدا نہ تھے، بلکہ ایسے دیوتاؤں کے لیے جن سے وہ واقف نہ تھے، بانی سے نئے دیوتاؤں کے لیے جو حال ہی میں ظاہر ہوئے تھے، جن سے ان کے باپ دادا کبھی ڈرے نہیں، قربانی کی۔ تو اس چٹان سے غافل ہو گیا جس نے تجھے پیدا کیا، تو خدا کو بھول گیا جس نے تجھے خلق کیا۔ خداوند نے یہ دیکھ کر ان سے نفرت کی، کیونکہ اس کے بیٹوں اور بیٹیوں نے اسے غصہ دلایا۔ تب اس نے کہا، میں اپنا منہ ان سے چھپا لوں گا اور دیکھوں گا کہ ان کا انجام کیسا ہوگا، کیونکہ وہ گردن کش نسل اور بے وفا اولاد ہیں۔ انہوں نے اس چیز کے باعث جو خدا نہیں मुझे गैरत और अपनी बातिल बातों से मुझे गुस्सा दिलाया, सो मैं भी उनके जरिया से, जो कोई उम्मत नहीं, उनको गैरत और एक नादान कौम के जरिया से उनको गुस्सा दिलाऊंगा, इसलिए कि मेरे गुस्सा के मारे आग भड़क उठी है, जो पाताल की तह तक जलती जाएगी और जमीन को उसकी पैदावार समेत भस्म कर देगी और पहाड़ों की बुनियादों में आग लगा देगी। मैं उन पर आफतों का ढेर लगाऊंगा और अपने तीरों को उन पर खत्म करूंगा। वो भूख के मारे घुल जाएंगे और शदीद हरारत और सख्त हलाकत का लुकमा हो जाएंगे, और मैं उन पर दरिंदों के दांत और जमीन पर के सिरकने वाले कीड़ों का जहर छोड़ दूंगा। बाहर वो तलवार से मरेंगे और कोठड़ियों के अंदर खौफ से, जवान मर्द और कमवारियां, दूध पीते बच्चे और पक्के बाल वाले सब यूं ही हलाक होंगे। मैंने कहा, मैं उनको दूर दूर परागंदा करूंगा और उनका तस्करा नोए बशर में से मिटा डालूंगा, पर मुझे दुश्मन की छेड़छाड़ का अंदेशा था कि कहीं मुखालिफ उल्टा समझकर यूं ना कहने लगे कि हमारे ही हाथ बला हैं, और ये सब खुदावन से नहीं हुआ, वो एक ऐसी कौम है जो मसलहत से खाली हो, उनमें कुछ समझ नहीं। काश वो अकलमंद होते कि उसको समझते और अपनी आकबत पर गौर करते, क्योंकि एक आदमी हजार का पीछा करता और दो आदमी 10,000 को भगा देते। अगर उनकी चट्टान ही उनको बीच ना देती और खुदावंद ही उनको हवाला ना कर देता, क्योंकि उनकी चट्टान ऐसी नहीं जैसी हमारी चट्टान है। खा हमारे दुश्मन ही क्यों ना मुनसिफ हों, क्योंकि उनकी ताक सदूम की ताकों में से और अमूरा के खेतों की है। उनके अंगूर हिलालल के बने हुए हैं और उनके गुच्छे कड़वे हैं। उनकी मै अजदहाओं का बस और काले नागों का जहरे कातिल है। क्या ये मेरे खजानों में सर बामोहर होकर भरा नहीं पड़ा है? उस वक्त जब उनके पांव फिसलें, तो इंतकाम लेना और बदला देना मेरा काम होगा, क्योंकि उनकी आफत का दिन नजदीक है, और जो हादसे उन पर गुजरने वाले हैं वो जल्द आएंगे, क्योंकि खुदावंद अपने लोगों का इंसाफ करेगा और अपने बंदों पर तरस खाएगा, जब वो देखेगा कि उनकी कुव्वत जाती रही और कोई भी ना कैदी ना आजाद बाकी बचा, और वो कहेगा, उनके देवता कहाँ हैं, वो चट्टान कहाँ जिस पर उनका भरोसा था, जो उनके जबीहों की चर्बी खाते और उनके तपावन की मैं पीते थे। वही उठकर तुम्हारी मदद करें, वही तुम्हारी पनाह हूं, सो अब तुम देख लो कि मैं ही वो हूं और मेरे साथ कोई देवता नहीं। मैं ही मार डालता और मैं ही जलाता हूं, मैं ही जख्मी करता और मैं ही चंगा करता हूं, और कोई नहीं जो मेरे हाथ से छुड़ाए, क्योंकि मैं अपना हाथ आसमान की तरफ उठाकर कहता हूं कि चूंकि मैं अब्दुल अबाद जिंदा हूं, इसलिए अगर मैं अपनी झलकती तलवार को तेज करूं और अदालत को अपने हाथ में ले लूं, तो अपने मुखालिफों से इंतकाम लूंगा और अपने कीना रखने वालों को बदला दूंगा। मैं अपने तीरों को खून पिला पिलाकर मस्त कर दूंगा और मेरी तलवार गोश्त खाएगी, वो खून मकतूलों और असीरों का, और वो गोश्त दुश्मन के सरदारों का सिरका होगा। ए कौमों, उसके लोगों के साथ खुशी मनाओ, क्योंकि वो अपने बंदों के खून का इंतकाम लेगा और अपने मुखालिफों को बदला देगा और अपने मुल्क और लोगों के लिए कफारा देगा। तब मूसा और नून के बेटे होसिया ने आकर इस गीत की सब बातें लोगों को कह सुनाई, और जब मूसा ये सब बातें सब इसराइलियों को सुना चुका तो उसने उनसे कहा कि जो बातें मैंने तुमसे आज के दिन बयान की हैं, उन सब से तुम दिल लगाना और अपने लड़कों को हुक्म देना कि वो एहतियात रखकर इस शरीयत की सब बातों पर अमल करें, क्योंकि ये तुम्हारे लिए कोई बेसूद बात नहीं, बल्कि ये तुम्हारी जिंदगानी है। और इसी से उस मुल्क में जहां तुम यर्दन पार जा रहे हो कि उस पर कब्जा करो, तुम्हारी उम्र दराज होगी। और उसी दिन खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू इस कोहे अबरेम पर चढ़कर नबो की चोटी को जा, जो यरहू के मुकाबिल मुल्क मुआब में है, और केनान के मुल्क को, जिसे मैं मिरास के तौर पर बनी इसराइल को देता हूं, देख ले। और उसी पहाड़ पर जहां तू जाए वफात पाकर अपने लोगों में शामिल हो, जैसे तेरा भाई हारून होर के पहाड़ पर मरा और अपने लोगों में जा मिला, इसलिए कि तुम दोनों ने बनी इसराइल के दरमियान दश्ते सैयन के कादिस में मरब्बा के चश्मा पर मेरा गुनाह किया, क्योंकि तुमने बनी इसराइल के दरमियान मेरी तकदीस ना की। सो तू उस मुल्क को अपने आगे देख लेगा, लेकिन तू वहां उस मुल्क में जो मैं बनी इसराइल को देता हूं जाने ना पाएगा।